Thank you. व्रज ओप वसः गावः कालिन्द्या उपकूलतः तां रात्रिं तत्र राजेन्द्र शुत्रुभ्यां श्रमकर्षिताः ऊषुर्वजौकसौ गावः कालिन्द्या उपकूलतः तां रात्रिं तत्र राजेन्द्र शुत्रुभ्यां श्रमकर्षिताः ऊषुर्वजौकसौ गावः कालिन्द्या उपकूलतः तां रात्रिं तत्र राजेन्द्र शुत्रुभ्यां श्रमकर्षिताः ऊषुर्वजौकसो गावः कालिन्द्या उपकूलतः श्रेष्ठ परीक्षित, क्योंकि वृंदावन के निवासी भूख प्यास तथा थकान के कारण अत्यंत निर्बल हो रहे थे, अतः उन्होंने तथा गवों ने कालिंदी के तट के निकट ही लेटकर वहीं रात बिताई। तात्पर्य, श्रील जीव गोस्वामी ने संकेत किया है कि यद्यपि लोग भूख तथा प्यास से दुर्बल हो गए थे, किंतु वहां पर उपस्थित गवों का दूध उन्होंने नहीं पिया, क्योंकि उन्हें भय था कि उनका दूध स्पर्श के सर्प के विष के से दूषित न हो गया हो। वृंदावन वासी अपने प्रिय कृष्ण को वापस पाकर इतने अधिक प्रसन्न थे कि वे अपने अपने घरों को जाना नहीं चाह रहे थे। वे कृष्ण के साथ यमुना तट पर ही ठहरना चाहते थे, जिससे वे उन्हें लगातार देख सकें। इसीलिए उन्होंने नदी के तट से निकट विश्राम करने का निश्चय किया। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकटां मह्यं ददाति स्वप्रकाशितम्। श्रीमत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीशाकान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। राधा गिरिधारी मंदिर में पुनः आप सबके बीच आने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, ये मेरे लिए बड़े प्रसन्नता की बात है और प्रतीक्षा हम सब कर रहे हैं उस दिन के लिए जबकि बड़े मंदिर का उद्घाटन होगा। शीघ्र ही होने वाला है मेरे ख्याल से। कब होने वाला है अभी तारीख निश्चय नहीं हुआ।
जन्माष्टमी
राधाष्टमी के लगभग, तो हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये सब आपके हृदय पूर्वक और भक्ति पूर्वक सेवा का फल है। भगवान आपके प्रेम का फल आप सबको दे रहे हैं। इतने सुंदर मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण होने जा रहा है। इस समय प्रसंग भागवत कथा में कालियागमन लीला की चल रही है और ये 17वां अध्याय है, कालिय का इतिहास। कालिया का दमन हो चुका है, श्री कृष्ण जल के बाहर निकल चुके हैं। कालिया के दमन तो क्या, कालिया का उद्धार श्री कृष्ण ने कर दिया है। अब सारा जल जो विषैला था वो तो पूरी तरह से साफ कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण के स्मरण मात्र से जब सब कुछ शुद्ध हो सकता है तो फिर भगवान के निजी स्पर्श से कैसे नहीं होगा। कालिये ने यमुना के जल को पूरी तरह से दूषित कर दिया था अपने विष से, और इसलिए कई गौएं प्राण त्याग चुकी थी उस जल का पान करके। यहां तक कि अनेक ग्वाल बाल भी अपने प्राण त्याग कर वहां लेटे हुए थे। जबकि श्री कृष्ण ने सोचा कि अब समस्या बहुत विकट हो गई है, अब तो हमें कुछ करना चाहिए। कदम वृक्ष के ऊपर आरूढ़ हुए और यमुना के जल में छलांग लगाई और सुंदर लीला का वर्णन आप पिछले अनेक दिनों से सुन ही होंगे। कालिया दमन की सुंदर लीला के बाद जब श्री कृष्ण बाहर आए, वहां तट पर सारे ब्रजवासी बड़े आतुरता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसी चिंता का अनुभव वो कर रहे थे कि शायद हम कभी समझ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि इतना प्रेम जो ब्रजवासियों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति था, वो कहीं और संभव नहीं है। उसकी झलक हम इस दुनिया में देख सकते हैं। जब हमारे कोई प्रिय व्यक्ति के साथ कुछ ऐसे घटना हो जाती है और उनके प्रति हम बहुत चिंतित हो जाते हैं, चाहे कोई हमारे परिवार का सदस्य हो या हमारे कोई निकट के मित्र हो, तो ऐसी भावनाएं हो सकती हैं। समझ लीजिए जब वो बहुत बीमार हो या कोई अपघात हो गया हो, तो उनके कल्याण के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बहुत चिंतित होते हैं। परंतु वो चिंता ऐसी चिंता नहीं है जो कि ब्रजवासीगण अनुभव कर रहे थे, क्योंकि चिंता उस मात्रा में बढ़ेगी जितना कि हमारे हृदय में उस व्यक्ति के प्रति प्रेम है। और संसार में निकट से निकट जो संबंध होते हैं, उन संबंधों में भी जो प्रेम की तीव्रता होती है, वो वृंदावन के निवासियों के हृदय में जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था, उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। वृंदावन की विशेषता दो चीजों में है। श्री श्री राधा गिरिधारी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा देवी की जय। पहली बात तो ये है कि श्री कृष्ण के प्रति जो उनकी उनका भाव रहता है, वो बहुत ही मधुर है, बहुत ही निकट का है। इसमें ऐश्वर्य भाव बिल्कुल नहीं है। वृंदावन में कोई भी श्री कृष्ण को भगवान मानकर प्रेम नहीं करता है। भले उनमें से कई लोग ये भी जानते होंगे कि श्री कृष्ण परम सत्य हैं, और ऐसे जगह जगह पर कोई प्रमाण प्राप्त होते हैं भागवत में कि गोपियां और अन्य ब्रजवासी भी जानते थे कि श्री कृष्ण परम सत्य है। फिर भी ये ज्ञान माधुरी ज्ञान था। उनके ऐश्वर्य का ज्ञान प्राप्त होने पर भी उनके हृदय में जो श्री कृष्ण के प्रति एक मधुरता थी, एक निकट का भाव था, वो शिथिल या कमजोर नहीं हुआ। जबकि देवकी और वसुदेव के हृदय में जो एक वात्सल्य प्रेम था, वो कमजोर हुआ। जबकि वो समझ गए कि श्री कृष्ण और श्री बलराम ये स्वयं भगवान हैं। उन्होंने जब कंस चाणूर मुष्टिक आदि का वध किया, तो देवकी और वसुदेव अचंभित रह गए कि अरे ये क्या हो गया, हमने तो सोचा था कि ये तो हमारे बच्चे हैं, लेकिन ये तो भगवान हैं। तो फिर तुरंत उनका वात्सल्य भाव कमजोर हो गया और कृष्ण को ऐसे अच्छा नहीं लगा। इसलिए योग माया का पर्दा पुनः है, माता यशोदा क्षमा कीजिए, देवकी और वसुदेव की आंखों के सामने उन्होंने डाल दिया और फिर से देवकी वसुदेव सोचने लगे, अरे ये तो हमारे पुत्र हैं। परंतु वृंदावन में ऐसे नहीं हुआ। वृंदावन में भले भगवान का ऐश्वर्य का प्रदर्शन वो बार बार क्यों न देखें, जब श्री कृष्ण ने ऐसे बड़े असुरों का वध किया, आए दिन वो असुरों का वध किए जा रहे थे, फिर भी ब्रजवासियों की जो प्रेम की मधुरता है वो कभी भी कम नहीं हुई। ये पहली बात है। और दूसरी बात जिसके कारण हम वृंदावन को बहुत विशेष मानते हैं वो ये है कि उनकी प्रेम की तीव्रता भी अधिक थी अन्य स्थानों के तुलना में। तो ऐसे प्रेम की तीव्रता समझना बहुत मुश्किल है साधारण व्यक्तियों को जो संसार के तथाकथित प्रेम से परिचित हैं। यहाँ का प्रेम तो क्या प्रेम, कौन सा प्रेम है ये? बहुत जल्दी शत्रुता में वैर में बदल सकता है और बदलता भी है। ऐसे तथाकथित प्रेम थोड़े समय के लिए रहता है, फिर दोनों व्यक्ति निराश हो जाते हैं। ये रह भी जाता है तो अंत में इसका अंत होता है। परंतु ब्रजवासियों का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति इतना तीव्र था कि इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ब्रजवासी गण श्री कृष्ण से इसलिए नहीं प्रेम किया करते थे कि श्री कृष्ण भगवान है, उनको कोई परवाह नहीं थी। ये भगवान हो न हो, कोई भी हो, हमारे लिए तो ये एक ग्वाल बाल है, श्री कृष्ण है, बहुत सर्व आकर्षक ग्वाल बाल है, इसलिए हम इनसे प्रेम करते हैं। तो जब श्री कृष्ण काली के साथ लीला कर रहे थे जल में, तो ब्रजवासियों के हृदय में चिंता भी उतनी ही ज्यादा थी क्योंकि प्रेम उनके हृदय में उतना ज्यादा था। और जो एक चिंता और विरह की भावना उत्पन्न हुई उसकी भी हम तुलना नहीं कर सकते हैं। विरह की भावना कब होती है? जब प्रेम होता है, किसी से बहुत अधिक प्रेम होता है और फिर उस व्यक्ति से हम अलग हो जाते हैं तब विरह होता है। किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम ही न हो तो वो व्यक्ति हमसे दूर भी चले जाए तो फिर कोई विरह की भावना नहीं होती है। तो ब्रजवासियों के हृदय में इतनी तीव्रता से प्रेम की उपस्थिति थी उनके हृदय में कि जब श्री कृष्ण थोड़े समय के लिए नहीं रहे और जब ये संभावना उनको लगी कि अब शायद श्री कृष्ण लौट के नहीं आएंगे, तो जो दुख का अनुभव उनको हुआ इसका वर्णन करना भी मुश्किल है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने तो संक्षेप में ही वर्णन किया है इस चीज का। तो खैर, जब श्री कृष्ण पुनः लौट के आ गए, ब्रजवासियों को ऐसे लगा कि मानो उनके प्राण ही लौट आए हैं। बल्कि प्राण तो क्या, श्री कृष्ण उनके लिए अपने निजी प्राणों से भी अधिक मूल्यवान और प्रिय थे। और ये है वृंदावन की और एक विशेष बात कि वृंदावन में ब्रजवासीगण श्री कृष्ण को अपने प्राण से भी अधिक प्रेम करते थे। अब ऐसी बातें तो हम कहीं देखते नहीं हैं। हम किसी से प्रेम भी करते हैं तो अपने प्राण से ज्यादा नहीं प्रेम करते। एक जगह सुखदेव गोस्वामी और राजा परीक्षित के बीच में जो संवाद होता है, सुखदेव जी कहते हैं कि वास्तव में श्री कृष्ण हमारे हृदय में निवास करते हैं और प्राणों के प्राण है वो। तो ब्रजवासियों के जीवन में ये प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता था। तो जब श्री कृष्ण वापस आए तट पे, तो जो राहत मिली ब्रजवासियों को, जो आनंद मिला, इसका भी वर्णन नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन भी सुखदेव गोस्वामी संक्षेप नहीं करते हैं। तो खैर, वहां पर आए और ब्रजवासी गण फिर से वहां रह गए। हाँ, जैसे जीव गोस्वामी पाद यहां कहते हैं कि तट पे वो रहे रात भर, गौओं को दूध को भी पीना नहीं चाहते थे, हालांकि वो बहुत थक गए थे, बहुत भूखे प्यासे थे। क्षुत क्षुत अर्थात भूख, तृप्त अर्थात प्यास, श्रमकर्षिता अर्थात बहुत थकावट हो गई थी उनको, तो भूखे थे, प्यासे थे, थक गए थे, क्योंकि काले दमन की लीला काफी समय तक चलती रही और तब तक वो राह देख रहे थे। माता यशोदा तो सहन नहीं कर पाए, वो तो बेहोश हो गई, लेकिन अनेक बेहोश हो गए लेकिन बीच बीच में होश आ जाते थे। तो खैर, फिर भी जब श्री कृष्ण वापस आए और उन्होंने दूध का पान नहीं किया, ये सोचकर कि शायद इन गौओं ने काली का यमुना का जल का पान किया है और ये जल तो विषैला हो गया है काली के विष के कारण, तो अब हम इस दूध का पान करेंगे तो हम मर जाएंगे। काली से अभी तक इतने डरे हुए थे, परंतु श्री कृष्ण का स्पर्श उस जल से हुआ है तो कैसे विष वहां रह सकता है। तो ये भी ब्रजवासियों का एक भाव है। तो खैर, फिर रात भर ब्रजवासीगण वहीं पर रहे, अपने घर में भी नहीं गए, क्योंकि श्री कृष्ण को जो वापस पा लिए थे वो अब घर का भी कोई आकर्षण नहीं था। अब जब श्री कृष्ण वापस आ गए, अपने घरों को भी भूल गए। और यहां पे जीव गोस्वामी के तात्पर्य को दोहराते हुए, टीका को दोहराते हुए कहा गया है, वृंदावन वासी अपने प्रिय कृष्ण को वापस पाकर इतने अधिक प्रसन्न थे कि वे अपने अपने घरों को जाना नहीं चाह रहे थे। और क्यों नहीं जाना चाह रहे थे, इसका उत्तर भी है। वे कृष्ण के साथ यमुना तट पर ही ठहरना चाहते थे, जिससे वे उन्हें लगातार देख सकें। इसीलिए उन्होंने नदी के तट के निकट विश्राम करने का निश्चय किया। देखिए, श्री कृष्ण का दर्शन करना ही ब्रजवासियों के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव हुआ करता था। हम तो उत्सव मनाते हैं साल में, महीने में एक बार कुछ न कोई क्यों न कोई उत्सव आता है, कभी रामनवमी, कभी गौर पूर्णिमा, तो कभी जन्माष्टमी, राधाष्टमी। परंतु वास्तव में उत्सव तो प्रतिदिन होना चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन हम मंदिर में आते हैं, या आना तो चाहिए, और आकर श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, ये उत्सव है। यस्याननम मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुभगस्स विलासहासम नित्योत्सवम न तत्पुर त्रिशुभेत्य मंत्रो नार्यो नराश्च मुदिता कुपितानिमेश्च। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के अंत में ऐसे वर्णन आता है मथुरा के निवासियों का। क्या वर्णन है कि यस्य आनन, यस्य अर्थात श्री कृष्ण के आनन, उनके चेहरे का वर्णन हो रहा है। उनके चेहरे पर मकर कुंडल, मकर कुंडल थे चारु कर्ण, उनके कान जो है बहुत सुंदर थे, और सुंदर कान और भी सुंदर लग रहे थे क्योंकि वो मकर कुंडलों से सुशोभित थे। भ्राजत कपोल, और उनके जो गाल है वो चमक रहे थे। सुभगर, उनका शरीर बहुत नाजुक था, और ये भी एक विरोधाभास जैसे लगता है। श्री कृष्ण तो सर्वशक्तिमान है, परंतु उनका शरीर बहुत नाजुक और कोमल प्रतीत होता है। काली ने भी जब देखा इनको, लगे ये छोटा बच्चा है, आकर्षित तो हो गया कालिया, क्योंकि श्री कृष्ण का रूप तो बड़ा सुंदर था, लेकिन कालिया ने शायद कल्पना की होगी कि इतना उपद्रव जो जल में मचाया है, ऊंचे ऊंचे लहरें और इतनी जोर की आवाज जो आई श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करने से, उनके कर कमलों का भी जो स्पर्श हुआ जल से, तो काले ने सोचा कि बहुत विराट को ही पशु आया होगा, और यहाँ देख रहे हैं छोटा सा एक बच्चा है, देखने में बहुत कोमल है, देखने में बहुत नाजुक है, परंतु श्री कृष्ण को बहुत ही हृष्ट पुष्ट देखने की आवश्यकता नहीं है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। तो देखने में श्री कृष्ण बिल्कुल एक 15-16 साल के युवक की तरह लगते हैं, तरुण की तरह, किशोर की तरह लगते हैं। सुभग सविलास हासन, तो उनकी लीला भरी मुस्कान चेहरे पे और भी के द्वारा वो और भी सुंदर लग रहे थे। नित्य उत्सवम, तो जब सारे भक्त उनको देखा करते थे उनके लिए नित्य उत्सव हुआ करता था, प्रतिदिन का उत्सव। जब भी श्री कृष्ण का दर्शन करते तो ये उत्सव हो गया वो होता था। न तत्रिपो, और श्री कृष्ण को देख देख कर वो कभी संतुष्ट नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि और देखना चाहते थे। जब दुनिया में देखा जाता है कि किसी अच्छी चीज को हम स्वीकार करते हैं तो एक समय आता है जब अच्छी चीजों से भी हम ऊब जाते हैं। समझ लीजिए कि हम बहुत भूखे हैं और बहुत स्वादिष्ट भोजन हमारे सामने रखा गया है, जिसमें कि तरह तरह के व्यंजन हैं जो हमें बहुत पसंद हैं, और हम खाए जाते हैं, परंतु एक समय ऐसे आता है जब उसको हम देखना भी नहीं चाहते। पेट इतना भर जाता है कि हम कहते हैं बस थाली ले जाओ हमारे सामने से। तो ये दुनिया का जो सुख है उसकी सीमा होती है। आद्यंतवंत है, तो उसकी शुरुआत होती है, अंत भी होता है। परंतु श्री कृष्ण के दर्शन में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, न तत्रिपो, वो कभी ऊब नहीं गए। ऐसे नहीं उनके मन में प्रश्न आया या बात आई कि अरे श्री कृष्ण का बहुत दर्शन कर लिया, अब और किसी चीज को देख लेते हैं, कितना कृष्ण को देखते रह जाएंगे, दूसरी चीज को भी तो बीच बीच में देखना चाहिए। लेकिन हमारे लिए कैसे होता है, कभी अन्य चीजों को देखते हैं, बीच बीच में कृष्ण को कभी देख लेते हैं और फिर सोचते हैं कि कब अन्य चीजों को पुनः देख लें। ब्रजवासियों की बात ऐसी थी, श्री कृष्ण के सुंदर मुखारवंद से अपने आंखों को हटाना नहीं चाहते थे। नित्योत्सवम तत्पो दृश्य पिबंत्यो, अपने आंखों से श्री कृष्ण के सुंदर रूप के अमृत का पान किया करते थे। नार्यो नराच मुदिता, जो नर नारी दोनों थे वो इस तरह अमृत का पान, श्री कृष्ण के सुंदर रूप के अमृत का पान करने के कारण मुदित थे, अर्थात बहुत आनंदित थे, परंतु साथ साथ कुपित निमेषचा, कुपित या क्रोधित भी हो गए थे। तो ये कैसे? इसलिए कि उन्होंने देखा कि सृष्टिकर्ता ने कैसे पलकें बनाई, आंखों के बाद बीच बीच में हमें बंद करने पड़ते हैं आंखें, और जब आंखें बंद करते हैं तो उस समय श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हो पाता है। तो सृष्टिकर्ता ने गलती कर दी है, तो उन्होंने ठीक से आंखें नहीं बनाई हैं, आंखें बीच बीच में बंद नहीं होनी चाहिए। ऐसे जब श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं तो बस सदैव खुले रहने चाहिए, जब बंद करते हैं आंखें बीच बीच में तो उस लव के लिए, कम से कम उस क्षण के लिए श्री कृष्ण को नहीं देख पाते हैं। तो कितनी बड़ी दुर्घटना है, एक क्षण के लिए कृष्ण को नहीं देख पाना। ब्रजवासियों की भावना ऐसी है, एक क्षण तो क्या, एक लव के लिए भी यदि श्री कृष्ण का दर्शन न हो तो मानो कि सर पे कोई वज्र टूट पड़ा है। कितने बड़ी दुर्घटना है ये। तो ऐसे ब्रजवासी जनों का विचार है, और वो सृष्टिकर्ता को पूछते हैं कि अरे ब्रह्मा जी क्या किया आपने, कैसे आपने आंखों की रचना की, ठीक से नहीं किया आपने सृष्टि की रचना। ऐसा ही भाव गोपी गीत में आता है, गोपियां प्रार्थना करती हैं अटति यद् भवान् अहनिकाननं त्रुटिः गायते पापश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड़ उदीक्षतां पक्ष्मकृत्तिशां। वो ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आपने क्या कर दिया, बड़ी गलती कर दी आपने। पक्ष्मकृत्तिशां, ये आँखें जो हैं बार बार हमें बंद करनी पड़ रही हैं और इससे हम श्री कृष्ण को नहीं देख पा रहे हैं। श्री कृष्ण से वो प्रार्थना करते हुए कहती है, अटते यद् भवान् अहनिकाननम्, कि हे कृष्ण, जब दिन के समय आप वन में चले जाते हो, काननम् कानन अर्थात वन में, अटती अर्थात जाते हो, तो उस समय त्वाम अपश्यताम, आपको न देखकर त्रुटि युगायते, एक त्रुटि एक क्षण का समय भी एक युग के समान प्रतीत होता है। हम आपके सुंदर मुखारविंद का दर्शन नहीं कर सकते हैं उस समय। अटति यद् भवान् अहनिकाननम् त्रुटियुगायते त्वाम् अपश्यता कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखम् च ते। और आपका जो सुंदर मुखारविंद है वो और भी सुंदर गत बन गया है, क्योंकि अलका जो है आपके कपोल पे आती है, तो इससे आपका सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। परंतु ये ब्रह्मा जी ने देखिए क्या गड़बड़ कर दी, आंखें ऐसी बनाई कि आपको हम नहीं देख पाते हैं बीच बीच में। तो ऐसे ब्रजवासियों की भावना थी, इसलिए गोवर्धन लीला जो है उनके लिए बहुत अच्छा कार्य हो गया। गोवर्धन लीला के समय श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया था, हाँ उनकी आंखें बीच बीच बंद तो हो रही थी ब्रजवासियों की, परंतु तो कम से कम दिन में श्री कृष्ण उनके उपस्थिति से दूर तो नहीं जाते थे, गांवों को चराने के लिए तो नहीं जाते थे। श्री कृष्ण ने पर्वत धारण किया था और सारे ब्रजवासीगण पर्वत के नीचे खड़े थे और उनका एक ही काम था उन 7 दिनों में। क्या काम था उनका, क्या काम था उनका, कृष्ण का दर्शन करना, दूसरा कोई काम नहीं, केवल खड़े होकर कृष्ण के मुखारविंद को देखते रह गए, जैसे चकोर चांद को देखता है, देखते रह गए। अब चकोर की बात आप जानते हैं ना, बहुत विशेष पक्षी है। चकोर की विशेषता क्या होती है आप जानते हैं, वो केवल चांद को देखता है और जब वो एक जगह खड़े होता है, चांद का उदय जब होता है तो चांद के ऊपर अब उसकी नजरें ठीक रहती हैं और जैसे जैसे चांद आसमान में ऊपर चढ़ते जाता है, वैसे वैसे एक जगह खड़े होकर ये चकोर अपने गर्दन को ऊपर 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 उठाता है ताकि उसकी आंखें चांद के ऊपर ही रहें। और जैसे चांद ऊपर चले जाता है, जैसे रात बढ़ती जाती है, वैसे वैसे चकोर अपने गर्दन को ऊपर उठाते जाता है, ऊपर 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 ऊपर, और फिर चांद बिल्कुल ऊपर आता है तो चकोर की गर्दन ऊपर रहती है, उसकी उसका मुख ऊपर की ओर रहता है। फिर आप पूछेंगे कि जब चांद पीछे जाता है उस समय फिर ये घूम जाता होगा, ये घूमता नहीं, उसको समय कहाँ है सोचने के लिए कि घूमना पड़ेगा। देखते देखते इतना आतुर हो जाता है ये अपने शरीर की परवाह न कर गर्दन को ही पीछे कर देता है। जब तक कि चांद अस्त न हो जाए तब तक वो एक ही जगह खड़े होकर गर्दन पीछे लग के ऐसे दर्शन करता है। समझ गए, ऐसे दर्शन करते हैं चकोर चांद का। जब तक चांद अस्त न हो जाए, चकोर वैसे खड़े होकर अपने गर्दन को घुमाकर चांद को देखते रह जाता है, तो 12 घंटे चांद का दर्शन लगातार हो जाता है। तो उसी तरह ब्रजवासी गण वो चकोर की तरह थे और श्री कृष्ण का दर्शन 7 दिन 7 रात लगातार करते रहे। और श्री कृष्ण तो पूर्णिमा के चांद की तरह है, न केवल सुंदर थे परंतु प्रकाशमान भी थे, तो रात के समय भी ब्रजवासी गण अच्छी तरह से दर्शन कर पाए श्री कृष्ण का। तो अभी श्री कृष्ण को वहां का गांव से बाहर वन में जाने की भी आवश्यकता नहीं थी। सारे ब्रजवासी वहां खड़े होकर कृष्ण का दर्शन किए जा रहे थे। तो ऐसे ब्रजवासी लोगों का आकर्षण श्री कृष्ण के प्रति रहता है, इतना तीव्र आकर्षण कृष्ण के प्रति। तो हमें भी वो प्रार्थना करनी चाहिए कृष्ण से, कौबे हवे शैति नमान, ऐसे भजन है आपने सुना होगा हमारा गौड़ीय भजन, कौबे हवे शैति नमान का मतलब है कब वो दिन मेरा होगा, कब वो दिन आएगा जब मेरे हृदय में भी श्री कृष्ण के प्रति ऐसे ही आकर्षण होगा कि श्री कृष्ण से मैं आंखें कभी उठा नहीं पाऊंगा। तो इसलिए श्री वृंदावन के निवासियों की जो भक्ति है वो बहुत विशेष मानी जाती है। इसे राग भक्ति कहते हैं। राग भक्ति अर्थात वो भक्ति, वो प्रेम जो बहुत तीव्र आसक्ति पर आधारित है, ऐसी आसक्ति की जिसका जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। और जो राग भक्तों के अनुगामी होना चाहते हैं उनको रागानुग भक्त कहते हैं। राग अनुग, उनके पीछे पीछे जाना। तो हमारे जीवन का उद्देश्य भी है कि हम ब्रजवासियों के पद चिन्हों में चलें, जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी ने सिखलाया है, कृत्रिम रूप से राधा कुंड में जाके निवास करके नहीं, परंतु जहां है स्थान है स्थिता शुद्धि गताम तनुवान मनोगे यह काय सो जित जितो इसी तरह स्त्री लोक क्या। जहां हम रहते हैं भले मीरा रोड में रह रहे हो तो यहीं रहकर राधा गिरिधारी के जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी के शरण में रह के भक्तों के संग में रह के श्रवण कीर्तन करना, भगवान की सेवा अन्य तरह से करना भी, और धीरे धीरे से हमारे हृदय में वही आकर्षण जागृत हो, ऐसी प्रार्थना हमें करते रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आपके कोई प्रश्न है? इस उम्र में उन्होंने कालिय दमन किया था। उस समय भगवान श्री कृष्ण बहुत कम उम्र के थे, 5 के कम ही थे। कब हुआ ये? उनकी उम्र हुई होगी, एक मिनट, छह के लगभग हुई होगी, क्योंकि ब्रह्म विमोहन लीला के बाद और गोवर्धन लीला के पहले। तो गोवर्धन लीला हुई थी, गोवर्धन लीला हुई थी 7 साल की आयु में, और ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी 5 साल के। 5 और 7 साल के बीच में तो लगभग 6 साल के लगभग पूरे होंगे उस समय श्री कृष्ण। हाँ, कि मैं ब्रजवासियों के राग भक्ति का वितरण करने आया हूं, परंतु दुनिया में सब जगह वैधिक भक्ति, सब जगह मतलब जो भक्ति कर भी रहे हैं वो राग भक्ति न होकर वैधिक भक्ति है। तो हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस फॉर्म में कौन सी भक्ति कर रहे हैं? वैसे तो हम जो कर रहे हैं वो हमारे ऊपर है, परंतु जो सिखाया जा रहा है वो वैधी और रागानुग का मिश्रण है। वैदिक भक्ति और रागानुग भक्ति में अंतर क्या है? दोनों साधन भक्ति के अंतर्गत आते हैं। साधन भक्ति अभ्यास का स्तर है, साधन का स्तर है, साध्य का, सिद्धि का स्तर नहीं है। सिद्धि की अवस्था हो जाती है तब हमारे भक्त को साध्य भक्ति को साध्य भक्ति कहते हैं। जब साध्य भक्ति नहीं होती तो साधन भक्ति। तो दूसरे शब्दों में साधन भक्ति में भी हम परिपूर्ण अवस्था में नहीं होते हैं। तो ऐसे साधन भक्ति में भी दो भाग किए गए हैं, वैधि भक्ति और रागानुग भक्ति। तो वैधि भक्ति वो भक्ति है जो केवल विधियों के अनुसार किए जाते हैं, विधि निषेधों का पालन किया जाता है। तो क्या रागानुग भक्ति में नहीं होता? होता है, परंतु जिन नियमों का पालन वैधि भक्ति में होता है वो आज्ञाकारी भक्त होने के कारण, श्रद्धावान भक्त होने के कारण होता है, केवल स्वाभाविक श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण होने के कारण नहीं। मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिए हैं, मुझे 16 माला करने हैं, मुझे करने होंगे। श्रद्धा है शास्त्रों की बातों में, श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे उनका भक्त होना चाहिए तो मैं भक्त हो जाता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं इस प्रकार से तो मैं वैसे करता हूं। तो गुरु साधु शास्त्र के शब्दों में विश्वास होने के कारण हम उस श्रद्धा के अनुसार आज्ञाकारी भक्त हो जाते हैं। भगवान के प्रति आकर्षण अवश्य है, नहीं तो श्रद्धा कैसे होती? थोड़ा बहुत आकर्षण है, परंतु स्वाभाविक आकर्षण या प्रेम श्री कृष्ण के प्रति उत्पन्न नहीं हुआ है। रागानुग भक्ति की अवस्था में प्राय हम नियमों का पालन करते हैं, एक आध बार कभी आकर्षण के कारण छूट भी जाते हैं, परंतु प्रधानता रागानुग भक्ति की अवस्था में ये है कि भक्त के हृदय में स्वाभाविक प्रेम, स्पॉन्टेनियस लव, अपने आप उभरता, हृदय में उभरता हुआ प्रेम रहता है। किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं होती है कि प्रभु आपने जप कर लिया कि नहीं, आपने भागवत पढ़ा या नहीं, टीवी देखना आज नहीं देखा ना टीवी, ठीक है, बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप ही भक्त सब करने लगता है। तो यह रागानुग भक्ति की अवस्था है। तो जो श्रवण कीर्तन का पथ है वो रागानुग की अवस्था है। सिद्धि की लालसा करना, अपेक्षा करना, वो रागानुग की अवस्था है। और जो बिल्कुल नियम पालन करके नियमों के अनुसार चलने का पथ है वो वैधि भक्ति है। तो हमारे संस्था में जो भक्ति है वो मिश्रित है, दोनों है। हालांकि हमारी अवस्था तो वो रागानुग की नहीं है, परंतु रागानुग के पथ में हमें आकर्षित किया जा रहा है। जैसे समझ लीजिए तुलसी की स्तुति हम प्रतिदिन करते हैं प्रातः काल, हम क्या प्रार्थना करते हैं? बोलिए, विलास कुंजे दियो वास, हे तुलसी महारानी वृंदावन के कुंजों में हमें वास दीजिए। और मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या है प्रार्थना? नयने हरि वो सदा युगल रूप राशि, कि आप युगल रूप राधा कृष्ण का रूप सदैव मेरे आंखों के सामने हो। ऐसे कई चीजें तुलसी की प्रार्थना आप पढ़िए, एक बिल्कुल रागानुग। तो चाहे हमारे तो रागानुग भाव को उत्पन्न करने के लिए हमें प्रेरित किया जा रहा है, परंतु हम हैं भी विधि विधानों के अंतर्गत सख्त, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो वैधि भक्ति की अवस्था में होकर रागानुग की ओर प्रोत्साहित हम किए जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे हमारी योजना है, ऐसे हमारे कार्यक्रम को बनाया है कि दोनों, वो जानते हैं कि हमारा स्तर क्या है और उस स्तर के अनुसार उन्होंने हमें नियम दिए हैं, एक कार्यक्रम दिया है, दिनचर्या दी है, परंतु साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि हम ऊपर की ओर बढ़ते रहें, स्वाभाविक आकर्षण की ओर बढ़ते रहें। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब अपने गौड़ी मठ का चिन्ह किया, वो आप देखेंगे उसमें, तो आधा भाग वैदिक भक्ति का है, आधा भाग रागानुग भक्ति का है। रागानुग भक्ति के बारे में बीच में क्या है, मृदंग करताल है और फिर भागवत है और अर्चा विग्रह की सेवा आदि वैदिक भक्ति में है और बीच में हरिनाम। तो हमारे यहाँ संक्षेप में कहा जाए तो वैदिक और रागानुग दोनों के भाग हम देखते हैं, ठीक है। हाँ जी, रागानुग और माधुर्य। अच्छा अच्छा माधुर्य तो ये एक भाव है, रागानुग भक्ति में भी अनेक भाव हो सकते हैं। राग अनुग, रागानुग का मतलब है कि हम वृंदावन के वासियों के पद चिन्हों में चले, परंतु वृंदावन के ब्रजवासियों के भाव अनेक हैं। गोपियों का भाव माधुर्य रस का है, माता यशोदा और नंद महाराज और वरिष्ठ गोप गोपियों का भाव वात्सल्य भाव है, उनके जो सखा आदि हैं उनका भाव सख्य रस का है और किसी का दास्य रस का है। तो ये अलग अलग रस हैं, रति जिनमें कि वो प्रेम करते हैं और इन सभी में वो तीव्र आकर्षण है, तीव्र आसक्ति है, राग भक्ति है, सभी की राग भक्ति है वृंदावन में। फिर भी हम एक चेतावनी के शब्द कहें कि कृत्रिम अवस्था में ऐसे रागानों को भक्ति की नकल नहीं करनी चाहिए। कई भक्त जाके फिर राधा कुंड में रहते हैं कि हम यहीं पर रहेंगे, तो वो सहज ये भाव हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। समय से पहले नहीं चीजें करने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने हमें एक कार्यक्रम दिया है उसी के अनुसार बस हमें चलते रहना चाहिए और धीरे धीरे से हमारी प्रगति अवश्य होगी, ठीक है। अंतिम कोई प्रश्न है? हाँ, क्या चीज रागानुग क्या ऐसी संभावना है कि जो वास्तव में रागानुग अवस्था में है और भक्त समाज उन्हें सहज ही समझने लगे? संभावना तो है, परंतु रागानुग अवस्था में होने पर यदि कोई भक्त है भी तो वो ऐसे प्रकट नहीं करेंगे। चैतन्य महाप्रभु तो रागानुग की बात तो क्या, वो तो सबसे ऊंचे प्रेम की अवस्था के भक्ति को चख रहे थे, फिर भी जब जन साधारण के सामने कभी नहीं दिखाए, उन्होंने दिखाए भी कभी विवश होकर ऐसे प्रकट हो भी जाते तो अपने आप को संभाल लेते। तो कभी भी ऐसे रागानुग की अवस्था के भक्त भी कभी ऐसे अन्यों के सामने दिखाएंगे नहीं, क्योंकि ऐसी ही भावना उत्पन्न होगी, लोग नकल करना शुरू करेंगे और ये भी दिखावे की बात हो जाती है। भक्त कभी दिखावा नहीं करना चाहता कि मैं कितना आगे बढ़ा हुआ हूँ भक्ति में। भक्त तो हमेशा नम्र रहते हैं और भक्त हमेशा यही सोचते हैं कि मेरे हृदय में तो कोई भक्ति नहीं है, इसलिए भक्तों के समाज में ऐसे लक्षणों से हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। ये भावुकता हो सकती है किसी भक्त की, जैसे आंसू बहाना, ये तो आंसू कई लोग हैं दुनिया में जो आसानी से रो पड़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रागानुग भक्त बन गए, क्योंकि उनका शरीर और मानसिक कुछ आदत ऐसे है कि जल्दी से रो पड़ते हैं। तो केवल रोना इससे रागानुग भक्ति के लक्षण नहीं होते, तो इन चीजों से थोड़ा सावधान हमें रहना चाहिए। बस प्रभुपाद जी के शिक्षणों के अनुसार बस जैसे उन्होंने बताया वैसे के वैसे हमें चलना चाहिए, फिर अपने आप सब ठीक ठाक होता है। हाँ,
अगर कभी हमें एसोसिएशन नहीं मिले और ऐसी अपॉर्चुनिटी ऐसा सिचुएशन आ जाए हम लोग नहीं जा पा रहे हैं या इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, उस टाइम हम हमारी भक्ति हमारी साधना कैसे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं?
तो प्रश्न ये है कि जब हमें भक्तों का संग नहीं मिल पाता किसी कारण से, हम मंदिर नहीं आ पाते हैं, तो फिर उस समय हमारी साधना को हम कैसे मजबूत रख सकते हैं? पहली बात तो ये है, जब आ सकते हैं तब आना चाहिए, पहली बात। उससे हमारी साधना अच्छी होगी, भक्ति सुदृढ़ हो जाएगी। और दूसरी बात, जब नहीं आ सकते फिर भी श्री कृष्ण का संग तो ले सकते हैं ना, प्रभुपाद जी का संग तो ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? हरि नाम के द्वारा। हमें जप करते रहना है ताकि श्री कृष्ण का संग हो। जब हम श्रीमद् भागवतम भगवद गीता आदि पढ़ेंगे तो हम प्रभुपाद जी का संग कर रहे हैं, हम श्री कृष्ण का ही संग कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ते रहना चाहिए, साथ साथ में अपने घर में भी छोटा सा मंदिर बनाना चाहिए यथाशक्ति, और भगवान को भोग चढ़ाना चाहिए, भगवान के सानिध्य में रहना चाहिए अपने घर में भी। फिर आजकल तो तरह तरह के उपकरण उपलब्ध हैं जिनके द्वारा आप कथाएं कीर्तन भजन सुन सकते हैं, टेप रिकॉर्डर और आईपैड आईपॉड, तरह तरह की चीज़ें आजकल हैं। घर में भी आप सुन सकते हैं, बाहर जाते समय भी आप सुन सकते हैं। इस तरह से कृष्ण भक्ति से गहरा संपर्क आपका बना रह सकता है यदि आप मंदिर में नहीं भी आ सकते हैं तो। परंतु जब थोड़ा भी मौका मिले आने का प्रयास करना चाहिए। तो जो स्वाद हमें भक्तों के संग में मिलता है वो अकेले रहने पर नहीं मिलता, ठीक है, स्वाभाविक है, ये समझने वाली बात है। फिर भी इसलिए हमने कहा कि मंदिर में जब थोड़ी बहुत भी आने की संभावना हो आ जाना चाहिए, संग प्राप्त करने के लिए थोड़ा भी अवसर मिले प्राप्त कर लेना चाहिए। और जब नहीं होता, जब कोई उपाय नहीं है, तो इन चीज़ों से ही हमें स्वाद प्राप्त होगा जिनका उल्लेख हमने किया, ग्रंथों को पढ़ना, ध्यान से जप करना, घर में कीर्तन करना, भगवान घर में अपने छोटे से मंदिर की में सेवा करना, कथा आदि टेप रिकॉर्डर पर सुनना, और आजकल फोन है, फोन पे भी हम भक्तों से संग रख सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं आजकल, पुराने जमाने में भी ये सब चीज़ें नहीं थी। कई बार ऐसे होता था भक्त कहीं अकेले में कहीं रहते थे, आजीवन अकेले कृष्ण भक्ति करते रहते थे, कभी कोई शिकायत नहीं करते थे, संग नहीं मिला, तीव्रता से करते थे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री राधा गिरिधारी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय, श्री रघुपाद की जय, गौर प्रेमानंद की, हरे कृष्ण।
समय लेके आएंगे तो और अच्छा रहेगा, दो तीन दिन का अगर अच्छा सेमिनार बता देंगे तो।